गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वे तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्नय माम चरणं तुते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्ति। जो कल पूर्णिमा गई है इसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इसका कारण ये है, यद्यपि मूल गुरु कृष्ण है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण गुरु हैं, कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद जी और नारद जी के शिष्य हुए वेदव्यास। ये वेद व्यास का जन्म कल हुआ था कि देखिए की है। वेद व्यास जी का जन्म कल पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए इसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। कोई भी संप्रदाय हो भारतवर्ष में, चाहे वैष्णव संप्रदाय हो चाहे अद्वैतवादी संप्रदाय हो, सभी लोग व्यास की पूजा करते हैं। इसका कारण क्या है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। मथुरा में कृष्ण गंगा के किनारे यमुना के बीच में टापू हो गया था और वहीं पर कुछ वन जंगल भी हो गए थे टापू के अंदर। एक समय पराशर ऋषि उस पार में दुर्वासा के आश्रम के पास में उनका आश्रम था, वहां से मथुरा आए, शाम को लौट रहे थे। मल्लाह को धीवर को बुलाया, हमको पार कर दो। तो थका हुआ था इसलिए अपनी लड़की को, वो भी उसकी खास लड़की नहीं, वो अस्परा की लड़की थी, उसको कहा जी बेटी जाओ ये महर्षि जी को पार कर दो। लड़की युवावस्था में थी, ऋषि को पार करने के लिए गई। जब वो टापू आया तो ऋषि ने, पराशर ने उसकी तरफ देखा और देखने के साथ ही साथ में 16 वर्ष का बड़ा श्याम सुंदर, बहुत ही सुंदर श्याम रंग का 16 वर्ष का जैसा जुआ, उसको लड़का पैदा हो गया। वो डर गई, ये कैसे हो गया? ऋषि ने कहा जी भगवान की इच्छा से है, तुम्हारा कुआपन ऐसा बना रहेगा और महाराज वो एक कौन शांतनु से तुम्हारा विवाह होगा और फिर जब जब जरूरत पड़ेगी तो व्यास जी उसके पास में, ये लड़का जाएगा उनके पास में। ये डरो मत, तुम कुंवारी की कुंवारी ही हो। तो उस द्वैपायन में, द्वीप में उनका जन्म होने से द्वैपायन हुआ और वेद का व्यास विवाह किया। वेद तले एक था अथर्ववेद, चार भाग किया, साम ऋक यजु और अथर्व, और अपने शिष्यों को उसको पढ़ाया। और उन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना की। उपनिषदों में जो मंत्र हैं, जैसे भगवान का रूप है, भगवान का रूप नहीं है, भगवान आनंदमय है, भगवान आनंदमय। साधारण लोग इसका सामंजस्य नहीं कर सकते जी, क्यों? इसके लिए ब्रह्मसूत्र की व्याख्या के रूप में पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की। उसे भी तृप्ति नहीं हुई तो उनके गुरु नारद जी के उपदेश से उन्होंने श्रीमद् भागवत की को प्रकाश किया। अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपो असौ वेदार्थ परिपिंडिता। ये गायत्री का भाष्य है, ब्रह्मसूत्र का अर्थ है, सारे उपनिषद और सब का ये तात्पर्य है, ये श्रीमद् भागवत। तो संसार में व्यास देव ही नारायण के अवतार हैं। ये व्यास इसलिए कहते हैं, ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरी छोर तक सर्वत्र भगवान की गुण गाथा प्रचार करते हैं। कृष्ण स्वयं भगवान है, मां यशोदा प्रेम से उनको बांध सकती है। जिनका आदि नहीं है, अंत नहीं है, भीतर नहीं है, बाहर नहीं है, ऐसे सर्वव्यापी कृष्ण को भी वो बांध सकती हैं अपने प्रेम की डोरी से। उनका जन्म नहीं है तो भी यशोदा जी के पुत्र हैं। विशेष करके गोपियों के ऋण को संशोधन पूरा नहीं कर सकते हैं, गोपियों के ऋणी हैं, ऐसे ये कृष्ण हैं। उनका चारों तरफ में जश विस्तार करते हैं, गुणान बाद व्यास्तार करते हैं, इसलिए उनका नाम वेद व्यास। वो यदि नहीं रहते, श्रीमद् भागवत भी नहीं रहता, पुराण भी नहीं रहते, महाभारत भी नहीं रहते, वेद भी नहीं रहते, कुछ भी नहीं। इसलिए ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है जो उनकी पूजा नहीं करता। उसमें भी अद्वैतवादी शंकर वेदांत सूत्र के आनंदमय प्राधिकरण में आनंदमय अभ्यासा, इसका अर्थ अपने अद्वैतवाद के अनुसार में नहीं कर सके, हार गए। अंत में उन्होंने कहा जी गुरु हमारे मूर्ख हैं, उन्होंने जो ऐसा सूत्र लिख दिया। किंतु वो नहीं जानते हैं व्यास जी ने ठीक लिखा, आनंद स्वरूप भी हैं, आनंदमय भी हैं, दोनों है। आनंद स्वरूप तो ही है, वेदों में आनंदमय अभ्यास, आनंदम अयम ब्रह्म आनंद, और भी कहा है अहो भक्तम महो भक्तम नंद गोप्रजाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। इसलिए ऐसे है, इसलिए व्यास जी ने ठीक लिखा है। इसलिए शंकर संप्रदाय के लोग गुरु पूजा करने के बदले गुरु को ही यदि मूर्ख बतलाएं तो उनकी पूजा संभव नहीं है, उसकी पूजा क्या करें, वो पूजा करेंगे। इसलिए चार वैष्णव संप्रदाय जिस रूप में उनकी पूजा करता है, विशेष करके हम लोग केवल गुरु नहीं, यदि एक माला में सूत्र न हो तो माला नहीं बनेगी, सूत्र यदि नहीं रहेगा तो माला कैसे बनेगी, जो सबको गाथे हुए है। इसलिए गुरु परंपरा का एक भी पुष्प यदि उसमें से निकल जाए तो गड़बड़ हो जाए। इसलिए हमारे गुरु जी श्री प्रभुपाद भक्ति श्री धन सरस्वती जी गुरु पूजा के दिन में या गुरु जी के जन्म तिथि के उपलक्ष में आचार्य पंचक, गुरु पंचक, गुरु परंपरा पंचक और उपास्य पंचक इत्यादि सात पंचकों की पूजा घट रख करके करते थे। अभी अकिंचन महाराज भी करता है, अभी भी ठीक है, उसको कंटिन्यू रखो। तो ये परंपरा है। और बाई चांस उसी दिन सनातन गोस्वामी जी का तिरोभाव हुआ। सनातन गोस्वामी अप्रकट लीला में प्रवेश किए, इसलिए वैष्णव लोग उसी समय से मुंडन करते हैं उस दिन, और कीर्तन करते हुए मानसी गंगा की परिक्रमा करते हैं। इसलिए मुंडन करते हैं सनातन गोस्वामी के लिए, इसलिए इसको कहते हैं मुड़िया पुनो। सनातन गोस्वामी जी हमारे संप्रदाय के स्तंभ हैं। यहां तक कि रूप गोस्वामी के गुरु हैं, बड़े भाई होने पर भी गुरु हैं। महाप्रभु जी ने इन पर कृपा करके सारी शिक्षाएं वाराणसी में दी थी। और इस तरह से चैतन्य चरितामृत में उसका वर्णन किया गया है। इसलिए सनातन गोस्वामी के अप्रकट के दिन में होने से इसका नाम भी मुड़ो पूर्णिमा है। आप लोग सनातन गोस्वामी के विचारों को पढ़ेंगे, समझेंगे, गुरु परंपरा का आदर करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे गुरु जी तक खत्म है, ऐसा नहीं, गुरु परंपरा का आदर होना चाहिए, वैष्णव का आदर होना चाहिए। जो वैष्णव हैं उनको सम्मान दो, ये मत समझो कि मैं ही वैष्णव हो गया सब कुछ जानने वाला, ऐसा अभिमान नहीं है। वैष्णव के लक्षण भागवत में दिए गए हैं, गुरु का लक्षण भागवत में दिया गया है, उसके अनुसार में वैष्णव बन करके यथार्थ रूप में दीनहीन होकर सनातन गोस्वामी के अनुगत्य में भजन करो, यही मूल शिक्षा है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचित उपासना बज बधु बरगई नजा कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमापमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रातु ब्रजेन्द्रनंदन श्याम सुंदर यशोदानंदन राधाकांत, यही हमारे उपास्य। जैसे वो उपास्य हैं वृंदावन धाम भी, वृंदावन को छोड़कर के कहीं नहीं जाते, और वृंदावन माने कृष्ण ही है बलदेव के रूप में, इसलिए धाम चिन्मय है, ये अप्राकृत है, इसलिए बढ़ता है घटता है। और गोपियों ने जिस प्रकार से कृष्ण की आराधना की थी वो आराधना सर्वश्रेष्ठ है। वो आराधना क्या थी? परकीय भाव से कृष्ण की आराधना, यही आराधना सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम ही एकमात्र प्रयोजन है, चैतन्य महाप्रभु का यही विचार। तन नाम रूप चरितादि सुकृतनान क्रमेण रसना मनसी नियुज्य तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगान कालम नएदखिलाम इत्युपदेश। रूप गोस्वामी कहते हैं कि समस्त उपदेशों का सार जो चैतन्य महाप्रभु ने जगत में प्रचार किया, भागवत में जो वर्णन किया गया है, वेद शास्त्रों में सबका सार यह है। क्या है? नंदनंदन ही हमारे सर्वार्थ है। उनका नाम रूप लीला का स्मरण करो मन के द्वारा, और जीवा से उन्हीं नामों का गान करो। जैसे गोविंद गोदामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद राधे 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 जय जय श्री ऐसे ही इन नामों का निरंतर मन के जीवा के द्वारा कीर्तन करो, और मन के द्वारा उन्हीं लीलाओं का चिंतन करो। जैसे दामोदर नाम है, प्रेम में पद गए यशोदा के, उन लीलाओं का स्मरण करो, और वृंदावन में वास करो, ब्रजमंडल में वास करो, गोवर्धन नंदगांव बसाना, ये सब ब्रजमंडल है 84 को, विशेष करके उनमें भी वृंदावन गोवर्धन नंदगांव बसाना, उसमें भी गोवर्धन, उसमें भी गोवर्धन की दो आंखें राधा कुंड और श्याम कुंड है, इसलिए वृंदावन में वास करो। यदि वृंदावन में नहीं कर सकते तो मन ही मन भी वास करो वृंदावन, और वास करके गुरु वैष्णव के अनुगत्य में रह करके भजन करो। तदानुरागी जनानुगामी, तदानुरागी कृष्ण के अनुरागी जन, तदानुगामी रूप गोस्वामी के अनुगत हो, ऐसे वैष्णव के अनुगत्य में ब्रज में रह करके भजन, यही समस्त उपदेशों का सार, यही अपना वक्तव्य मैं समाप्त करता हूं। महामंत्र कर लिया।